ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के घर में, विशेष नए हॉल में, योग तपस्या के लिए और योग तपस्या के द्वारा इस हॉल के वायुमंडल को स्पिरिचुअल बनाने के लिए आप सभी आए हैं। आप सबका भी बाबा के घर में स्वागत है। इसमें नड़ियात के भाई बहने कौन कौन हैं, हाथ ऊपर करें। नड़ियात पूरा जोन आ गया, वल्लभ विद्यानगर या वस्तु या वो कपड़वंज, जो भी टोटल नड़ियात सब जोन है, सूरत नहीं। बहुत अच्छा, सूरत वराछा से काफी भाई बहने वहां से आए। सूरत के लोग डरते नहीं, नहीं? मौजी मस्त आत्माएं कहते हैं कि वहां अगर फ्लड भी आएगा ना तो दूसरे दिन भी लोग भेलपुड़ी खाने निकलेंगे है ना, मस्त नेचर के, बहुत अच्छा। सूरत नड़ियाद और बड़ोड़ा, अच्छा बड़ोड़ा से भी अटलादरा ने, बहुत अच्छा। और कहां से हैं? अच्छा बड़ोड़ा अलकापुरी जोन वाले, अच्छा वो भी है। और हो गए सब आ गए, अच्छा लग रहा है सबको कि खाली खाली लग रहा है शांतिवन? क्योंकि बाबा की सीजन में तो भीड़ में आते हैं ना आप, कहां 20,000 15,000 25,000। और आप सभी 200-400 भाई बहने, बहुत बड़े बेहद परिवार का भी आनंद लेते रहे हैं और अब थोड़ा एकांत शांति तपस्या का भी आनंद लेते हैं। तपस्या में आनंद आता है, सच बताना, किस किस को आनंद आता है? अच्छा, क्योंकि आनंद आएगा तो नींद नहीं आएगी, है ना? खैर ये टाइम तपस्या का नहीं है, 12 से 1 वाला पर हमें तो अपना समय पूरा ही सफल करना है। इसलिए वैसे हमें रोज बाबा की याद में आनंद आना चाहिए, है ना? जिसमें खुशी होती है वो हम सदा कर सकते हैं। जिसमें खुशी नहीं तो मन भी नहीं लगेगा, मजा भी नहीं आएगा। तो अपने आप को चेक करना है, है ना? पुरुषार्थ हम करते रहते हैं पर शांति से अकेले बैठकर हम चेक भी करें कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें हमें खुशी है, मजा आता है, प्राप्ति समझते हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि भाई अब क्या करें, ज्ञान में आ गए, फंस गए, हाँ बच गए फंस नहीं गए पर बच गए, सेफ हो गए। तो जरूरी लगता है रोज ज्ञान योग करना चाहिए, ऐसा आवश्यक लगता है आप सबको कि अब जरूरी नहीं है, पुराने हो गए? हाँ, कोरोना के दिनों में अलबेले तो नहीं बन गए, सचमुच आवाज थोड़ा ही आया देखो। हाँ, माताओं ने जवाब नहीं दिया। कोरोना के ये 6-8 मास में अपने आप ज्ञान योग करना हुआ ना, तो उसमें अलबेले तो नहीं हो गए? नहीं ना, दिनचर्या पक्की रही कि सुबह बिगड़ नहाए धोए बैठ गए टीवी के सामने मुरली सुनने? हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ। नेचुरल हो गया ना अब हमारी दिनचर्या, कोई देखे ना देखे, कहे ना कहे, पर हमारा जीवन ही ये है। अमृत वेले उठना, फिर तैयार होना, मुरली क्लास करना, फिर कर्म योग, सारा दिन ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, कोई हर घंटा 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, संध्या योग, ये सब पक्का रहा? रोज 2 घंटा योग किस किस ने किया कोरोना के दिनों में? 2 घंटा, 3 घंटा किसने किया? 3 घंटा, 1, 2, 3, 4, बस। खाना कितनी बार खाया? हाँ, सुबह नाश्ता करेंगे, फिर 11-12 बजे कुछ फ्रूट खाएंगे, फिर दिन में खाना खाएंगे, शाम को चाय तोली खाएंगे, रात्रि भोजन, ये तो 5 बार हो जाता है ना। और योग जो इन दिनों में हम सभी अपने अपने घर में ही रहे, तो आपस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा हुआ, वो हाथ ऊपर करो। नहीं करेंगे। क्योंकि सभी सारा दिन घर में ही रहे, तो स्वभाव संस्कार के टकराव भी कईयों के हो गए। बेशक हम बाबा के बच्चे, ज्ञानी तो आत्माएं, हम 1-2 को जानते हैं, पहचानते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से हमारा लक्ष्य तो ये ही रहना चाहिए कि हमें हर आत्मा को जो है जैसे है स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें स्वीकार किया कि नहीं? हम जो हैं, जैसे हैं, कैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, जानते हैं ना हर एक, 1-2 को भी हम आपस में जानते हैं, परिवार में भी जानते हैं, पर बाबा ने हमें प्यार से स्वीकार किया। आज भी बाबा ने बताया ना कि बच्चों ने बाप को सर्वव्यापी कहकर बाप का तिरस्कार किया। हाँ? लेकिन बाबा ने बच्चों पर उपकार किया, तो बाबा ने हमें स्वीकार कर लिया ना, वे जो हैं जैसे हैं मेरे हैं, तो हमें भी फिर औरों को स्वीकार करना है ना, समझ लेना है कि भाई इनका स्वभाव ऐसा ही है, तो हमें सावधानी से चलना है। आप राइट साइड रोड पर चल रहे हैं, पर सामने से कोई व्हीकल रॉन्ग साइड आता है तो आप क्या करेंगे? हाँ, वो तो रॉन्ग साइड आ रहा है ना, आप तो लेफ्ट चल रहे, उसको तो राइट में जाना है, फिर भी वो रॉन्ग साइड आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपने को सेफ कर लेंगे ना, कि लड़ने बैठेंगे, अरे भाई तुम इधर क्यों आ रहा है, तुम्हें उधर जाना है, तो इतने में तो आ जाएगा। तो हम अपनी सेफ्टी कर लेंगे ना, तो ऐसे ही हम आपस में रहते हैं, तो हमें अपनी सेफ्टी कर लेनी, कोई रॉन्ग साइड चल रहा है, तो हमें लड़ना नहीं है पर अपने आप को सेफ कर देना है। जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बाबा की मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां, ज्ञान की किताबें, मैगजीन्स, पढ़ाई की, वो हाथ ऊपर करें, क्योंकि योग तो 24 घंटा तो नहीं कर पाते हैं ना, तो पढ़ाई में टाइम सफल किया, बहुत अच्छा। क्योंकि वैसे हम पहले नॉर्मल लाइफ में थे तो बिजी रहते थे, टाइम नहीं टाइम नहीं, अंदर इच्छा भी होती थी कि मुझे अच्छी तरह से ये पढ़ना है, मुरलियों की स्टडी करनी है, ज्ञान की किताबों की स्टडी करनी, पर टाइम नहीं मिलता है। लौकिक से फ्री होते हैं तो सेंटर की सेवाएं, कोई ना कोई प्रोग्राम की सेवाएं, खुद सेवा में कहीं ना कहीं बिजी हो जाते। तो ये मौका था अच्छी रीति पढ़ाई करने का, तो उसमें हमें समय सफल करना है। सेवा किस किस ने की लॉकडाउन में? मनसा सेवा किस किस ने की? बहुत अच्छा। और आपस में भी एक दो में हिम्मत भरना है ना, टेंशन में नहीं आना, ऐसे परिस्थिति में एक दो को अच्छी बातें ज्ञान की सुनाना या एक दो में बल भरना है ना, क्योंकि कई लोग घबरा गए, हमें तो बाबा का ज्ञान है इसलिए बाबा के बच्चे तो नहीं घबराए, नहीं घबराए ना, हाँ मान ले नहीं घबराए क्योंकि हमें तो आदि मध्यंत पता है ना, बाबा ने बहुत सालों से हमें अंतिम समय की बातें, विनाश की बातें, परिस्थितियों की बातें बाबा ने हमें बताई है ना, बहुत लंबे समय से। मैं तो कहूंगी यज्ञ बाबा ने स्थापन किया तब से लेकर अंत समय महाविनाश की बातें बाबा सुनाते रहे। आपको पता है ना बाबा दादियों को क्या कहते थे, कि दूसरी दीपावली नहीं देखेंगे शुरू में यज्ञ के आदि में बाबा ने, दादियां जब समर्पित हुई तो बाबा बताते थे कि अगली दीपावली आप नहीं देखेंगे। और कितनी दीपावली देखी दादियों ने, 80 से ज्यादा हरेक ने। तो बहुत लंबे समय से बाबा सुनाते रहे, और ही हम सभी कई बार ऐसा सोच लेते थे कि बाबा कहते हैं पर विनाश तो होता नहीं है ना, ऐसे बोल देते थे, मन ही मन सोच लेते थे। और कई ब्राह्मण तो ऐसा भी कहने लगे कि अरे ऐसे थोड़ी विनाश होगा, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, दूसरों को भी अलबेला बनाने लगे। परंतु अब परिस्थिति आ गई ना, लगता है कि नहीं, अंत की परिस्थितियां आ गई, अब इससे आगे और बढ़िया मुसीबतें आनी है। बाबा कहते हैं ना दुखों के पहाड़ गिरेंगे, अति होंगी है ना, मां विनाश की प्रक्रिया भी अति पर जाएगी, पांचों तत्व बाबा ने कहा ना एक साथ उथलेंगे। तो ये बातें तो आनी है क्योंकि ये महापरिवर्तन का समय है, तो हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हमें जो ये टॉपिक आज दिया है ना, साथीपन और साक्षीपन, ये दोनों अभ्यास बहुत काम में आएंगे। जब कोई साथ नहीं होता है उस समय कौन साथ होता है ना, निराकार बाबा हमारे साथ होता है। क्योंकि शरीरधारी को तो शरीर की लिमिट है ना, उसको तो सोने में भी टाइम उनका जाएगा, जब वो सो जाएंगे तो हमारा साथ थोड़ी दे सकते, वो स्नान करेंगे तो हमारे साथ नहीं हो सकते, तो हरेक का कुछ न कुछ लिमिटेशन है। शरीरधारी हर क्षण और हर स्थान साथी नहीं हो सकता है, ये पक्का समझ में आ गया। ये हमें पक्का समझना है विवेक से कि कोई भी देहधारी सदाकाल का हर क्षण हर स्थान साथी नहीं हो सकता। कहने के लिए तो दुनिया में हमारे बहुत मित्र संबंधी हैं, परंतु होते हुए भी, रिश्ते नाते संबंध होते हुए भी कई ऐसा महसूस करते हैं ना, लगभग सभी ऐसा महसूस करते हैं कि मेरा कोई नहीं है कि नहीं ऐसा, क्योंकि हर कोई अपने अपने स्वार्थ में है, मतलब में है। तो साथ रहते हुए बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, परिवार होते हुए भी महसूस होता है कि मेरा अपना कोई नहीं। उस समय कौन अपना महसूस होता है? बाबा निराकार, क्योंकि उनको शरीर नहीं है, इसलिए उनको अपना कोई स्वार्थ नहीं, उनको हमसे कुछ चाहिए नहीं। शिव बाबा को हमसे कुछ चाहिए नहीं, वो निस्वार्थ है, बाबा कहते हैं ना निष्काम है, इसलिए वो निराकार होने के कारण निस्वार्थ भाव से हर घड़ी हमारे साथ हो सकते। आज कोई व्यक्ति बहुत भली है, उदार है, प्रेम स्वरूप है, उनके साथ संबंध में कोई भल स्वार्थ नहीं है, पर आत्मा का संबंध तो आत्मा को बांधने वाला है ना, बांधने वाला है, हमारा आपसी हिसाब किताब बन जाता है। और वो बहुत प्यारे हैं, सहयोगी हैं, परंतु कभी भी शरीर छोड़ सकते, वो तो किसी के हाथ में नहीं है ना, वो कहीं दूर भी चले जाएं, उनसे हमारे संबंध कोई कारण से टूट जाए, तो आत्माओं का प्यार आत्मा को बांधने वाला है और गिराने वाला है। क्योंकि देहधारी से संबंध देहभान में लाता है ना, आप चाहे देवात्मा को याद करो, धर्मात्मा को याद करो, कोई भी देहधारी को याद करो, कोई योगी को याद करो, संत को याद करो, बच्चे को याद करो, किसी को भी शरीरधारी को याद करना वो शरीर भान में लाता है, वो शरीर भान में लाता है। तो आत्मा का वो संबंध आत्मा को नीचे लाने वाला है, गिराने वाला है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं ना, वी फॉल इन लव, क्या कहते हैं, हम उसके प्रेम में पड़ गए, गिर गए। कोई कहता है कि वी राइज इन लव, कोई नहीं कहता है, क्योंकि आत्माओं से हिसाब किताब आत्मा को चक्कर में लाएगा, दुख के बंधन में लाएगा। और विशेषकर संगम युग का समय, जिस समय भगवान खुद सृष्टि पर आते हैं, उस समय हमें मौका है भगवान को साथी बनाने का, है ना? क्योंकि मनुष्य आत्माएं चैतन्य है, इसलिए इमोशनल भी हैं, सेंसिटिव भी, उनमें भावनाएं भी हैं, संवेदनाएं भी हैं, इसलिए वो अकेला नहीं रह सकता। क्यों समाज बना, क्यों परिवार बना, क्यों संबंध बने, क्योंकि आत्मा को एक दुखा साथ स्नेह सहयोग शक्ति चाहिए। हम संबंध क्यों जोड़ते हैं? हरेक देखो माता पिता जन्म से है ना, फिर भी भाई चाहिए बहन चाहिए, नहीं है तो अफसोस करते रहते हैं मुझे भाई नहीं, और दूसरों को भाई बनाने का अंदर में लक्ष्य हो जाता है। बहन नहीं है तो भी माइंड करें, भाई बहन है तो भी फ्रेंड्स चाहिए। भाई बहन तो है ही ना, फिर भी फ्रेंड्स सर्कल क्यों चाहिए? क्योंकि उनको उस संबंध का सुख चाहिए। तो ये मनुष्य आत्मा अनेक संबंधों में क्यों बंधता है? एक तो उनको साथ चाहिए, कंपनी चाहिए। अभी एक बाबा की मुरली में था ना, संडे की मुरली में था कि हरेक को कंपनी चाहिए और कंपेनियन चाहिए। कंपनी माना सखा फ्रेंड्स, कंपेनियन माना साथी चाहिए। मेरा अपना कोई हो जो मेरे साथ रहे, मुझे सहयोग दे, मुझे समझे, मुझे स्नेह करे, शक्ति दे, तो साथी बनाने के लिए सर्वोत्तम कौन है? एक भगवान। इसलिए बेसहारे का अविनाशी सहारा भगवान को कहा जाता है। स्नेह चाहिए है ना, हर आत्मा को प्यार चाहिए। शरीर से युवा है, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, हर आत्मा को प्यार चाहिए। इसलिए हम रिलेशंस बनाते हैं। हमें समझ चाहिए, एक से दो भला ऐसे कहते हैं, क्योंकि एक दो के अनुभव से, एक दो की बुद्धि से हमें नए थॉट्स मिलते हैं, नया ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है। भैया माइक चलाना है पर हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है, पर अगर भाई हमें समझाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, थैंक यू आपने हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया, क्योंकि गाइडेंस मिलता है, समझ मिलती है। शक्ति चाहिए, एक दो को बल भरते हैं, हिम्मत भरते हैं तो व्यक्ति उमंग में आके काम कर लेता है। अकेला करना है तो भारी और मुश्किल लगता है, पर दो चार मिलके करते हैं तो इजी हो जाता है। तो ये एक मदद मिलती है, शक्ति मिलती है, बल मिलता है। सहयोग चाहिए है ना, अकेले करते हैं और कोई दो आके मदद कर दे तो कितना हमें अच्छा लगता है। घर में बड़े बड़े बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पर माँ को कोई मदद नहीं करते हैं तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ये खा पी के बैठे रहते हैं, मदद नहीं करते हैं, तो माताएं फिर बाबा को कहने लगती है कि बाबा ये कोई मदद नहीं करते, आप मदद करो। तो देखो बाबा मदद करते हैं ना, माताएं क्या अनुभव है। मनोहर दादी जब थे ना तो ज्ञान सरोवर में सेवाधारी भाई बहनों से मिलती थी, माताओं से मिलती थी, तो दादी ने पूछा माताओं को कि घर में तो आप दो चार दस का खाना बनाते हैं, सब्जी काटते हैं, रोटी बनाते हैं, पर यहाँ तो आप 500-500 हजार लोगों का सब्जियां काटते हैं, रोटियां बनाते हैं, तो थक नहीं जाते? तो एक माता ने कहा कि दादी नहीं, हम बिल्कुल नहीं थकते हैं, माताओं ने जवाब दिया। तो दादी ने कहा क्यों, एक माता ने कहा कि दादी और ये यहाँ हम खुशी से आराम से सब कुछ करते हैं, वहां मैं इसलिए थक जाती हूँ क्योंकि मैं करती हूँ और मेरी बहू करती ही नहीं, मदद ही नहीं करती, यहाँ तो बाबा हमारे साथ है। तो देखो इसलिए हर कोई साथी चाहता है। अब बाबा को कहती है माताएं तो फिर बाबा किसी न किसी को टच करके मदद देते हैं, या तो हमारे ही हाथ पांव में शक्ति भर देते है ना, या कोई ना कोई मदद के लिए आ जाता है। तो बाबा को हम साथी बनाएं, कोई भी बात है बाबा कहते हैं एक तो कभी भी अपने को अकेला महसूस नहीं करो, भल लौकिक शरीरधारी जो भी हैं नहीं भी मदद करते हैं पर हम अपने को अकेला नहीं महसूस कर, हम सदा सबसे पहले हर बात में किसको याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे कि बाबा ये परिस्थिति है, ये बात है, आप मेरे साथी। पर उसमें अंडरलाइन क्या करना है, या बाबा को कहेंगे पर बाबा मदद कब करेंगे, जब दिल से बाबा को कहेंगे, सच्चाई से आपने बाबा को अपना बनाया, मतलब से अपना बनाएंगे तो मदद नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं ना बाबा को साथी बनाना अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना, बाबा में ही बुद्धि योग लगाना और कोई में भी आसक्त नहीं, उसको कहते हैं सच्चा साथी बना। दुनिया में भी गृहस्थी के संबंधों में भी है ना, जब एक दो के साथ संबंध जुड़ जाते हैं, शादी हो जाती, फिर हर कोई क्या चाहेगा, वफादारी कि अब मैं तेरा तू मेरी, अब और किसी में बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, पति या पत्नी के अलावा और किसी में बुद्धि भटकती है तो वो अच्छा नहीं लगता है, समाज भी उसको अच्छा नहीं मानता, फिर तो आप जानते हैं ना इस दुनिया में पता है ना, फिर एक दो में शंका होगा, चेकिंग करेंगे, फिर मारपीट क्या क्या चलता है एक बेवफाई के कारण। संबंध जोड़ा मीन्स वफादारी चाहिए। तो बाबा को साथी बनाना माना वफादार, एक बाबा दूसरा न कोई, फिर और किसी में फंसना नहीं, फिर वो अज्ञानी है या ज्ञानी है, कोई में भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। साथी मीन्स संस्कार मिलन है ना, संबंध जोड़ा पर संस्कार मिलते ही नहीं है तो फिर खिटपिट होती रहेगी, घर में टकराव होता रहेगा। साथी बनना माना एक दो को एडजस्ट करना, एक दो के साथ संस्कार को मैच करना। आज हम मधुबन में रहते हैं तो हमें भी तो मैच करना होता है ना, जो समर्पित बहने हैं उनको भी जिसके साथ हम रहते हैं तो वहां भी सेट तो करना होता है ना, मैचिंग तो करनी पड़ती है। तो बाबा को साथी बनाना मीन्स मुझे अपने संस्कार बाबा जैसे बनाना है। भल बाबा ने उदारता से हमें कह दिया, प्रॉमिस दे दिया कि आप जो हैं जैसे हैं मेरे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हम बाबा के सिर पर पड़े हाँ भाई ये तो माथे पड़े हैं ऐसे बोलते हैं ना, इसका अर्थ ये है कि अब बाबा जैसा चाहते हैं ऐसा मुझे बनते जाना, इसको कहते हैं साथ निभाना। ठीक है, मैं जो हूं जैसी हूं, बाबा ने मुझे स्वीकार किया, पर मेरा साथ ये है कि बाबा जैसे चाहते हैं ऐसी मैं बनती जाऊं, ताकि बाप समान बनकर हम बाबा के साथ वापस घर जा सके। है ना, देखो समान नहीं है तो पति भी सोचता है ना कि इनको नहीं ले जाना, इनको आता नहीं है, ढंग नहीं है बरोबर। जहां प्रोग्राम में जा रहा हूं वहां ये ठीक से चलेगी नहीं तो ले नहीं जाते, तो बाबा भी क्या कहेगा कि भाई मेरे साथ तो मेरे जैसी बनेगी तो मैं ले जाऊंगा। तो साथ जाना है या पीछे पीछे जाना है? शोभा तो उसमें है ना, साथ में जाए तभी तो साथी कहेंगे, नहीं तो साथी कहां हुए। तो जैसा बाबा चाहे ऐसा हम बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं, उसको कहते हैं साथी बन। साथी अच्छा है तो सोचते हैं ना आपस में कि भाई सास ननन जेठानी देरानी कैसी भी है, पति तो अच्छा है ना, तो उसके कारण भी सब कुछ निभाते हैं, सब कुछ निभाते हैं। मुरली में गीत आता है ना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, क्यों? क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो। बाबा इतना प्यारा है, इतना सुखदाता है कि बाबा का परिवार भी स्वीकार्य है, प्यारा है ना? तो संगठन में परिवार में चल सकेंगे। तो अगर प्रैक्टिकली हम बाबा और बाबा के बच्चों के साथ भी मिलके चलते हैं तो कहेंगे कि बाबा से सच्चा प्यार है, क्योंकि साथी बनना माना तो उससे जुड़ना, परिवार बनाना, हर बात में साथ साथ रहना। हमें सिर्फ शिव बाबा की प्रेमिका नहीं बनना है, क्या बनना है? सजनी बनना है। अरे भाई बोलो ना, आप आत्मा नहीं है तो देहबान में क्यों? हाँ, कि हमें भगवान के लिए, भगवान साजन है ना, तो हम उनकी सजनी हैं। सजनी ही तो ऑथोराइज्ड होती है ना उनके पीछे, कितना भी प्यारी हो पर उनको हिस्सा नहीं मिलेगा ना, उनको अधिकार किसको मिलेगा, वर्षे का या पार्टनरशिप का, टोटल जो संबंध जोड़ते हैं। कुमार भाई क्या चाहते हैं? भगवान का प्रेमी का बनेंगे? हाँ, कुमार है कि नहीं, हाथ ऊपर करो, कौन कौन कुमार भाई बैठे। तो भगवान को अपनी साजन बनाना है, सिर्फ प्रेमी का नहीं, खाएं पिए मौज करें, प्रैक्टिकल कुछ भी काम न करें, नहीं, हमें कायदे सिर संबंध जोड़ना है, तो हम अधिकारी बनते हैं। और साथी जो बनते हैं उनका एक दो के लिए क्या लक्ष्य रहता है कि उनको जो अच्छा लगे वो करना है ना, उनको अच्छा लगे ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसा भोजन बनाना है, यही लक्ष्य रहता है ना, कि उनको जो अच्छा लगे वो बोलना है, वो चलना है, वो काम करने है। तो बाबा को साथी बनाया माना जो बाबा को अच्छा लगता है उस अनुसार चलना। उनकी श्रीमत, उनकी चाहना, हम बच्चों से जो है वो ही करते जाना। फिर अपनी कोई चॉइस नहीं रहती, अपनी कोई अलग इच्छा नहीं रहती, तो अपने पन को, मैं पन को मिटाना, हमारी अब अलग कोई इच्छा नहीं, जो बाबा चाहे वो ही मुझे करना है। तो कहेंगे कि साथी, आपस में हम भी साथी, पर कौन से साथी है बताओ? हाँ, अलौकिक रूहानी साथी। आज तो बाबा ने कहा ना कि तुम लौकिक मित्र संबंधियों की सर्विस करो तो भी तुम्हारी दृष्टि क्या रहे, पूरा बोलो, अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रहे। लौकिक दृष्टि से सेवा नहीं हो सकती, अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से सेवा करनी। तो हम भी, हमें भी अपेक्षा नहीं रहेगी, हमारा लक्ष्य क्या रहेगा कि सभी बाबा के बने, बाबा के मददगार बने, सेवा में सहयोगी बने, है ना। हर कोई चाहते हैं ना कि अपने लौकिक मित्र संबंधी भी ज्ञान में चले, फिर हमें कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। वो हमें क्या देते हैं, हमारे घर प्रसंग में उन्होंने नहीं किया था ये, वो कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को भी बाबा जैसा निष्काम बनाया है। तो वो हमारे भी साथी सहयोगी बनेंगे, अगर हम उनके साथ निष्काम भाव से चलेंगे तो अपने आप वो हमारे सहयोगी बनेंगे, और कम से कम विघ्न नहीं डालेंगे, क्योंकि हम भी समय पर उनको मदद करते हैं। हमारे अपने नियम मर्यादाएं हैं, पर हम लौकिक में भी आवश्यक समय पर मददगार जरूर बने, तो वो भी हमारे साथी बनेंगे। तो ऐसा प्रैक्टिकल साथीपन बाबा के साथ निभाना है। तो बाबा कैसे हाजिर हो जाएगा? हाँ, जी हजूर करके बाबा हमारे साथी बन जाए। हमने याद किया और बाबा हमारे साथ हो जाए। बल हमारे अपने हिसाब किताब है, साथी माना हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे हिसाब किताब बाबा चुकाए। वो तो ज्ञान है ना सबको कि अपने हिसाब किताब खुद को ही चुकाने होते। पर मान लो बच्चा बीमार है और माँ बाप बहुत प्यार से सेवा करते हैं तो उसको बल मिलता है ना। व्यक्ति बीमार पड़े पर कोई ध्यान ना दे तो मन और भारी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो हमारे हिसाब किताब तो हमें ही चुकाने, पर बाबा मदद करेंगे, मन को शक्तिशाली रखेंगे। जब हमें विश्वास है कि बाबा मेरे साथ है तो हमें, हम दुखी नहीं हो जाएंगे। तो किस किस को ऐसा साथीपन स्वीकार्य है बाबा के साथ? हाँ, खुशी से हाथ उठाना। हाँ, क्योंकि ये वास्तविक है। आप आत्माओं से कोई चाहना नहीं कर सकते, ये सत्य है कि बाबा को अगर हम सच्चे दिल से साथी बनते हैं तो बाबा जरूर हमें मदद करते, खुद करेंगे, किसी के द्वारा भी करेंगे। और जो ड्रामा है, हर क्षण जो परिस्थिति है, आत्माओं का जो हमारे साथ का खेल है, व्यवहार है, उसमें साक्षी बनना है। हर आत्मा का अपना अपना संस्कार है ना, तो उसको माइंड नहीं करना, व्यर्थ में नहीं जाना है। ये कैसे हैं, क्या बोलते हैं, देखो ठीक नहीं है, ऐसे दुखी नहीं हो जाता। साक्षी होकर ड्रामा की हर सीन को देखना है और आत्माओं के व्यवहार को देखना। बाबा कहते हैं ना, साक्षीपन की सीट पर सेट होकर परिस्थिति और आत्माओं को देखेंगे तो सही निर्णय ले सकेंगे। निर्णय तो क्षण क्षण लेने पड़ते हैं ना, करे न करे, जाए न जाए, आज नहीं कल, कुछ भी, मतलब हर क्षण डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो अगर हम किसी के प्रभाव में आएंगे तो राइट डिसीजन नहीं ले सकते। हम सबसे डिटैच होके, डिटैच होना साक्षी होना। तो जब हम सबसे अलग होकर और अपनी ऊंची त्रिकालदर्शी पन की स्थिति में स्थित होकर ज्ञान स्वरूप बनकर देखेंगे तो राइट डिसीजन ले सकेंगे। ये बहुत जरूरी है, तभी हमारा हर कर्म यथार्थ होगा। परिस्थिति का प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि हम अपनी साक्षीपन की ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित है। और ही आप उस समय क्या करेंगे, शुभ भावना का, दिल की दुआओं का सहयोग दे। सिर्फ साक्षी नहीं बनना है, कुछ भी हो जाए मैं देखता रहूं, ये तो दयाहीनता है, ये तो दयाहीनता है। बाबा साक्षी होके देखते हैं और शुभ भावना से सहयोग देते हैं। तो रियल साक्षीपन माना न्यारा होकर ज्ञान स्वरूप स्टेज से देखना और जो अच्छा कर सकते हैं वो करना। तो आप अपनी अवस्था को, बिना साक्षीपन आप अचल अडोल नहीं बन सकते, अपसेट होते रहे। हमें पता है ड्रामा एक्यूरेट है, स्वीकार है ये बात, मेरा ड्रामा ये ऐसा करके नाराज क्यों होना है भाई। बाबा कहता है ड्रामा एक्यूरेट है, फिक्स है पर एक्यूरेट है। ऐसा नहीं यहां किसी के साथ भी कोई अन्याय, पक्षपात नहीं होता है। देखने में आएगा ये मेरे साथ ठीक से चलते ही नहीं है, पर हम जानते हैं कि वो मेरे साथ ही ठीक क्यों नहीं चलते। अगर वो गलत होते तो सबके साथ ठीक नहीं चलते ना, पर मेरे साथ ही ऐसा करते हैं क्योंकि मेरा कर्मिक अकाउंट है। तो ड्रामा एक्यूरेट है, हम जानते नहीं हैं पर कर्म सिद्धांत पर ड्रामा चलता है। तो जब ड्रामा एक्यूरेट है तो कल्याणकारी, कल्याणकारी है। और जब ड्रामा कल्याणकारी है तो स्वीकार करना है ना, स्वीकार करना है, फिर कोसना नहीं है अपने आप को, मेरा नसीब ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। बाबा भी कुछ देखता नहीं, बाबा पर भी नाराज हो जाते। पर बाबा का ज्ञान याद है, डिटैच है, तो हमें हर सीन में कल्याण दिखाई दे, और आप हर परिस्थिति से सबक सीख सके। बाबा कहते हैं ना, जो हो चुका ड्रामा करो, सबक सीखो और आगे बढ़ो। और आज के समय में जब अंत का समय है, अंतिम हिसाब किताब चुकाने के लास्ट दृश्य आ रहे, तो हमें बहुत ही धीरज से, हिम्मत से, शांति से, योग से साक्षी बन के आगे बढ़ना है, सहन करना है। हिसाब आज बाबा ने कहा कि कल कहा, नए हिसाब नहीं बनाने। कल शायद था ना मुरली में कि नए हिसाब नहीं बनाने, बने हुए हिसाब योग बल से, हिम्मत और धीरज से चुकाने हैं। कितने दिन हो गए लंबी बीमारी, कितना दिन हिसाब ही नहीं पूरा हो रहा है, 2 साल से शुभ भावना दे रही हूं, असर नहीं हो रहा है, थकना नहीं है। थकना नहीं, हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जब बहुत हिसाब किताब चुकाने का अंत का समय आया, तो बाबा हमारे साथ है, हमारे सत्कर्म हमारे साथ है, हमारी श्रीमत और धारणाएं हमारे साथ है। तो हम बहुत आसानी से हिसाब किताब चुका सकेंगे। और बाबा कहते हैं ना, मक्खन से बाल निकालते हैं, ऐसे हम शरीर से निकल के वापस घर जाएंगे। जाना है ना घर, कौन सा? परमधाम। वापस घर जाना है, ये सत्य है ना। संगम युग, अंत का समय हो या ना हो, पर आत्मा को शरीर छोड़ के तो वैसे भी जाना ही है। तो बाबा हमें तैयार करते हैं कि हम सहज ही जाएं, इसलिए रोज देहभान से न्यारा करता है, देहधारियों से न्यारा करता है, और इस दुनिया से भी न्यारा करता है। देहभान से न्यारे कैसे होते हैं? खुद को आत्मा समझेंगे तो देहभान से न्यारे, बाबा से सर्व संबंध जोड़ेंगे तो देह संबंधों से न्यारे हो जाएंगे। रोज परम धाम में जाएंगे तो इस दुनिया से न्यारे हो जाएंगे। तो ये अभ्यास हमें करना। तो सभी खड़े हो जाओ। पहला अभ्यास, खुद को आत्मा समझना। न मैं शरीर हूं, न मेरा शरीर है, मैं एक ज्योति बिंदु, चैतन्य शक्ति, देह से अलग। शरीर रूपी गुफा में मैं योगी आत्मा विराजमान, शरीर रूपी गुफा में मैं जगमगाती चैतन्य ज्योति, राइट साइड घूम जाई, दूसरा अभ्यास रोज करें, मेरे असली अविनाशी संबंध एक बाबा से, बाकी सभी आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा में सह पात्रधारी है, साथी नहीं, संबंधी नहीं, सभी आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा में सह पात्रधारी, मेरे सर्व संबंध, मेरी सर्व प्राप्तियां मूल रूप से एक बाबा के साथ, वापस राइट साइड हो जाए, इस वर्ल्ड ड्रामा में इस अंतिम जन्म के लौकिक अलौकिक पार्ट में अब मैं ट्रस्टी हूं, मालिक बाबा है, मैं निमित्त मात्र ट्रस्टी, इस लौकिक अलौकिक प्रवृत्ति में मुझे बाबा की आज्ञा अनुसार चलना, मालिक बाबा है, करावनहार बाबा है, मैं निमित्त करनहार, मैं साक्षी बनकर स्वयं के पार्ट को, सर्व के पार्ट को देखती हूं, स्वयं और सर्व प्रति शुभ भावना रखते हैं। राइट साइड घूम जाए, अब मैं इस शरीर में केवल इसलिए हूं, मैं बाबा को याद करके सर्व की सेवा कर सकूं। मैं इस दुनिया में सेवा के लिए मैं इस शरीर में इसलिए हूं कि मैं बाबा को याद कर सकूं। दाता की संतान, मास्टर दाता बन, मुझे सर्व आत्माओं को, सर्व पशु पंछियों को, समग्र प्रकृति जगत को शांति पवित्रता का सहयोग दे दें। बाबा ने हम बच्चों को सब कुछ दिया है, सर्व गुण, सर्व शक्तियों और अनुभूतियों का खजाना दिया है। हमें मास्टर दाता बन सर्व को देना, राइट साइड घूम जाए। रोज इस दुनिया से दूर पांच तत्वों से पार अपने असली घर परम धाम जाना है। अपने असली स्वरूप में, असली घर में, असली बाबा के पास इन आंखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। शरीर से यहां रहें, बुद्धि से असली घर परम धाम में रहें। बैठ जाए। ओम शांति। ये अभ्यास रोज करेंगे क्योंकि ये मूल अभ्यास है, रोज अनेक बार हमें करना है। तो सदा बाबा साथी और हम भी इस दुनिया में साक्षी, न्यारे और प्यारे। ओम शांति।